नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। राजस्थान दिवस समारोह के तहत आज जनजातीय गौरव दिवस, राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में। जयपुर से किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को 6 लेन में विकसित किया जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निष्पक्ष मतदाता सूची को लोकतंत्र की नींव बताया। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना SASCI के तहत मिल रहे सहयोग पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से विकसित राजस्थान के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर भी चर्चा की। श्री शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राजस्थान में नई शिक्षा नीति NEP 2020 के क्रियान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शिक्षण और युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के विषय पर चर्चा हुई। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में कल राजस्थान उत्सव का शुभारंभ किया। ये उत्सव 25 मार्च तक चलेगा। इसमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प और गीत संगीत तथा पारंपरिक व्यंजनों की झलक देखने को मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव देश विदेश के लोगों को राजस्थान की संस्कृति से जोड़ने का प्रभावी प्रयास है। श्री शर्मा ने इस दौरान शिल्पकारों और राजीविका दीदियों से भी संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उनके उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने और व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी के लिए जो सुविधाएं दी है, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में लगभग 20 लाख लखपति दीदियों को हमने प्रशिक्षण कराया है, और मानते हैं कि 16 लाख महिलाएं हमारी लखपति बन गई। और इसी वजह से हमने पहले हम 1 लाख रूपये देते थे, अब हमने उसमें 1.5 लाख रूपये किया, क्योंकि हमें बताया कि जल्दी ही हमारी जो बात करता हूं बहनें मिलेनियर दीदी बनने वाली है, तो अगर हमारी बहनें माता हैं सुदृढ़ होंगी तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बीकानेर हाउस में राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। राजस्थान दिवस समारोह के तहत आज प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा इस समारोह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में कल युवा शक्ति दिवस मनाया जाएगा। वहीं कल भीलवाड़ा, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों में एक जिला एक उत्पाद ODOP मेले और प्रदर्शनियों की शुरुआत हुई। पुलिस के विशेष कार्यबल STF की ओर से अंबाला से गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध आतंकियों के तार हनुमानगढ़ से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। ये आतंकी पिछले महीने हनुमानगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान इनके 2 साथियों को हथियारों के साथ पकड़ा गया था। ADG ATS दिनेश MN ने बताया कि ATS की टीमें जांच के लिए अंबाला भेजी गई हैं और हनुमानगढ़ में IED रखने सहित राज्य से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में LPG वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि LPG बुकिंग में गिरावट आई है। कल लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई, वहीं इस महीने की 13 तारीख को लगभग 88 लाख बुकिंग दर्ज की गई थी। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। ये अब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। जयपुर से किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के करीब 90 किलोमीटर लंबे खंड को 6 लेन में विकसित किया जाएगा। लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने इस महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन की स्वीकृति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में जयपुर से किशनगढ़ तक के हिस्से को 6 लेन में चौड़ा किया जाएगा। आवश्यक स्थानों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, वहीं सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकेगी। वहीं 25 किलोमीटर लंबे शाहपुरा बाईपास की DPR तैयार करने के लिए भी 1,09,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस बाईपास के बनने से इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि किसी भी लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष मतदाता सूची होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त कल नई दिल्ली में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषणा के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1 चरण में और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। उधर पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 मई को होगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटे और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल नहीं हो।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को ये संवैधानिक दायित्व देता है कि वो सिर्फ पात्र लोगों को ही सूची में रखें। जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द इंस्ट्रक्शंस। राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदला है। कल कई जिलों श्रीगंगानगर, झुंझुनू और जयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं हनुमानगढ़ और टपुकड़ा क्षेत्र में ओले भी गिरे। हनुमानगढ़ से हमारी संवाददाता ने बताया कि कल शाम कुछ देर आंधी चलने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, वहीं आज भी तेज हवाओं का सिलसिला बना हुआ है।
जिले में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण मौसम के अचानक पलटा खाने से जहां रबी की फसलों को फायदे की उम्मीद जगी थी, वहीं अब नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। रविवार से जारी बूंदाबांदी और उसके बाद चली तेज हवाओं ने खेतों में खड़े गेहूं की फसल को बिछा कर धराशायी कर दिया है। तेज आंधी के कारण फसलें जमीन पर गिर जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। किसानों का मानना है कि इस स्थिति में दाना कमजोर पड़ सकता है, जिससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ेगा। वहीं कृषि विभाग का मानना है कि ठंडक से गेहूं को लाभ मिलेगा, लेकिन तेज हवाओं के साथ बारिश फसल खराबे का कारण बन सकती है। जिले में करीब 6,00,000 हेक्टेयर में हो रही रबी की खेती पर अब मौसम की बेरुखी का साया मंडरा रहा है। सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में किसान अब जल्द से जल्द फसलों को सुरक्षित समेटने की जदोजहद में जुटे हुए हैं। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
बदलते मौसम के कारण ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 38.6 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। राजस्थान दिवस समारोह के तहत आज जनजातीय गौरव दिवस राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में। जयपुर से किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को 6 लेन में विकसित किया जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निष्पक्ष मतदाता सूची को लोकतंत्र की नींव बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।